दादा जान।
हाँ।
आप बारिश में क्यों खड़े हुए हैं? क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? अंदर आइए, अंदर आइए, सहरी का वक्त कम है।
ओह भाई मरियम साहिबा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारी शोर शोर सुन के। अगर नजला हो गया है तो घर तशरीफ ले जाओ और आराम फरमाओ, हद होती है भाई।
जी अच्छा।
मरियम साहिबा आप जाइए, घर जाइए, और अगर तबीयत ठीक ना हुई तो मत आना, ठीक है?
जी जनाब।
हाँ।
फरीदा।
हाँ।
क्या हुआ?
पांव का जख्म ज्यादा गहरा नहीं है।
हाँ पैर अब बेहतर है। डॉक्टर मैं आज दफ्तर नहीं आऊंगा, मैं घर पे रुकना चाहता हूँ।
कोई घर पे नहीं रुकेगा, शाहीन और डॉक्टर कंपनी जाएंगे। जब तक फरीदा अपनी माँ को तैयार करती है तुम डॉक्टर को फोन करके देखो वो क्लिनिक पे है या नहीं।
मैं 19वीं के दिन कैसे तलाश करूं? पता नहीं वो
19वीं का दिन हो या कोई सा भी दिन, क्लिनिक पे नहीं होगा तो किसी अस्पताल या किसी कब्रिस्तान में कहीं तो होगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, आप खुद इनका मुआयना कर ले तो कैसा रहेगा।
जावेद अहमद साहब, आपकी बेगम, अगर आपको याद हो तो शुरू के महीनों में भी इन्हें कुछ रिफ्लेक्स था, और इस तरह अचानक खड़े हो जाना मुमकिन है पट्ठों के खुश्क हो जाने की वजह से हो। जरा रुक जाइए ताकि इनका मौजूदा एक्सरे आ जाए, हम कुछ चीजों से मुतमईन हो जाएं, उसके बाद बता।
तो मतलब मुमकिन है कि इनका खड़ा होना ज्यादा पायदार न हो, है ना?
लगता है आपको गिलास का आधा खाली सा देखना पसंद है।
किस चीज का आधा?
ले आए नौजवान, लाओ मुझे दो। शुक्रिया।
क्या हुआ डॉक्टर?
क्या आपका नाम यही है जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आदिया आजारी?
जी हाँ।
डॉक्टर, तुम्हें इसके नाम से क्या वास्ता? आपको क्या लगता है कि हम अपने मरीज का नाम देखने आए हैं?
मैं तसल्ली करना चाहता हूँ जनाब। तुम और तुम्हारे बाप ने या तो मेरा मजाक उड़ाया या फिर इस बेचारी औरत का।
सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं।
लेकिन तुम्हारे वाले साहब बखूबी समझते हैं बहन। अगर ये एक्सरे वाकई आपके हैं तो आप कोशिश करके आहिस्ता आहिस्ता इस व्हील चेयर को छोड़कर खड़ी हो सकती है।
एक मिनट, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो कि जो रह रहे के मुझे तंजो ताने से नवाज रहे हो? देखो डॉक्टर, तमीज से बता दो कि तुमने इन तस्वीरों में क्या देखा है, इससे पहले कि इस क्लिनिक को तुम्हारे सर पे गिरा के रख दूं।
तमीज से बात कीजिए जनाब, लेकिन मैंने अपने काम में कम मौजजे नहीं देखे। बाज मौजजे खुदा दिखाता है और बाज मौजजे पैसा, लेकिन अमूमन ऐसे मौजजे के पीछे वो पैसा होता है जो बाज अफराद को उनकी बेगम की सेहत पर खुश नहीं होने देते।
बाबा एक मिनट खामोश रहे। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, इस कमरे में कोई भी ऐसा नहीं जो असल माजरे से बाखबर नहीं होना चाहता, इसीलिए बराए मेहरबानी जरा वाजे बताएं।
मोहतरमा, मैं ये बात आपको खुल के बता देना चाहता हूँ, या तो आपके मगज और दीगर असाब के सेल बहुकुमे खुदा खुद ब खुद मुतहर्रिक हो गए हैं, या फिर वो स्कैन जो पहले दिन लाकर मुझे दिखाया गया था और आपके नाम पर था, वो आपका था ही नहीं। बॉसों को यही पसंद था आपको दिल बर्दाश्ता करके खाना नशीन कर दें और बहुत आसानी से एक रकम देकर अपाज औरत के एक्सरे के नीचे आपका नाम लिखवा दिया।
क्या मैं भी तुम्हें एक मौजजा दिखाऊं?
बाबा, बाबा,
बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपका ममनून, बड़ी नवाजी।
खुदा बरकत दे।
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
क्या हुआ फरीदा? डॉक्टर साहब की पिटाई कर दी, लेकिन क्यों? मतलब बिल्कुल ही ठीक हो गई?
डॉक्टर, अगर चाचा को पता चल गया तो हमारे जिंदगी मसाइल का गढ़ बन जाएगी।
इस डॉक्टर को 2000 में भी समझ नहीं आई कि
देखो, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, अभी बाबा बहुत गुस्से में है।
सब कुछ खुदा हाफिज़। इत्तेफाक था, सिर्फ एक इत्तेफाक।
तुम भी अहमक बनी रहना चाहती हो क्या? जवाब दो मुझे, तुम भी अहमक बनी रहना चाहती हो क्या?
रामीन, हालात को इससे ज्यादा बदतर मत करो, गुजारिश करती हूँ, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ।
तुमने खुद देखा ना, मैंने तुम्हारे सामने डॉक्टर कवामी को फोन किया था, उसने क्या कहा? उसने कहा, भाई मगज का फालिज है और मुमकिन है कि पट्टों पर भी मामूली सा बाल आ गया हो। तुम्हें ठीक नहीं बताया डॉक्टरों ने, बिला वजह कह दिया था कि तुम्हारी हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं।
मतलब डॉक्टर कवामी सिर्फ एक आम सा डॉक्टर है?
अरे बाबा, तुम सिर्फ अपनी ही क्यों बोलती जा रही हो? अरे भाई, उसने तुम्हें सही नहीं बताया था और गलत जवाब दे दिया, और तुम जैसी सादा दिल औरत ने यकीन भी कर लिया कि अब चल नहीं सकती।
मगर एक्सीडेंट के बाद ना ही मेरा सर फटा था ना ही मैं बीमार थी।
तो क्या मगज की चोट के लिए सर फटना जरूरी है? तुम्हारे मगज पे चोट आई थी, उसके बाद तुमने बात टाल दी और खुद नहीं समझ सकी। यानी अगर उस वक्त मैं तुम्हें कह देता कि आदिया उठो और खड़ी होके चलो तो तुम कर लेती। शक मत करो, तुम खड़ी हो सकती थी। अब मेरे साथ इतनी टेटे मत करो। अब मुझे कोई दलील और वजह नहीं सुननी, समझे तुम? कान खोल के सुन लो तुम दोनों, तुम्हारी माँ खुद ठीक होना चाहती थी सो वो ठीक हो गई। इसके अलावा किसी से भी कोई उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें इसके हाथ के पास नहीं होनी चाहिए ताकि किसी को कुछ बोलने की हवस ना कर सके। फिलहाल वहाँ फोन नहीं होना चाहिए जब तक मैं खुद इजाजत ना दे दूँ, समझ आई?
जी अच्छा।
तुम भी समझ गए? याद रखना, अगर किसी को फर्क भी पड़ जाए तो तुम लोगों के सर कलम कर दूंगा मैं। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, समझ गए या नहीं?
मैं बहरा नहीं हूं बाबा, समझ गया हूं।
हाँ,
सलाम अली साहब, रोजे नमाज कबूल हो इंशाल्लाह।
आपके रोजे भी कबूल हो इंशाल्लाह।
हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा मैं चलता हूं।
क्या बात है हाजी साहब, आजकल फोन नहीं करते आप?
अरे क्या हुआ? हाय मर जाऊं दीना।
जरा सा बैठ जाऊं तो ठीक हो जाऊंगा। हाँ।
कुछ हाँ। बेहतर हुआ?
हाँ।
दादा जान, आपको मौला का वास्ता सच बताइए, क्या बात है? चाहे आपको रोजा खुलना पड़ जाए, क्या कमजोरी की वजह से हो रहा है?
दीना, मेरे ख्याल में जिस चीज के होने का मुझे खौफ था वो शबे कदर को हो चुका है।
क्या इत्तेफाक हुआ है?
फिलहाल उसका तस्करा ही मत करो।
किसी ने आपको बताया है या?
आहिस्ता बोलो। किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने कल रात उसकी निशानियां देखी थी और उसका अंजाम कल मार्केट में देख लिया। कल रात जब हम आमाल करके लौटे थे मुझे मेरा ख्वाब याद आ गया। मैं बारिश में सहन में खड़ा हुआ क्या कर रहा था?
दादा जान, मतलब आपको कल रात ही याद आ गया कि आप उस ख्वाब में क्या बना रहे थे, फिर आप समझ गए कि अहदिया साहिबा को शिफा मिल गई है?
मैं किसी चीज का तना बना रहा था, वो कश्ती के बादबान का तना था। कश्ती बना रहा था दीना, वो भी घर के अंदर, बिल्कुल उस अकलमंद की तरह जिसे सब पागल कह रहे थे। اس خواب کی تعبیر سوائے قرآنی نشانیوں کے اور کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ پانی سے دور کشتی بنانا یعنی عذاب، یعنی حجت کا تمام ہو جانا، یعنی وہی چیز جس کا مجھے خوف تھا۔ میں نے جلیل کو بتا دیا تھا، مگر مجھے معلوم ہے اسے بالکل فکر نہیں ہے کہ عذاب اس کے سر پر آ پہنچائے۔
اب اپنے آپ کو مزید پریشان مت کیجیے، ابھی تک آپ مطمئن تو ہیں نا؟
ان کے آنے تک مطمئن نہیں تھا۔ کچھ پاگل لوگ جو کل تک مجھے ایک دیوانے کی نظر سے دیکھتے تھے، آج وہ مجھے ایک مستجاب الدعوی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔
کون، مارکیٹ والے؟
اسے رہنے دو، جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب میں کون سی خاک اپنے سر پر اڑاؤں کہ قہر الہی کو روک سکوں۔
ذرا رکیے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، اور پھر کیا دوبارہ اٹھ کے وہاں امر و نہی اور فرض کے نام پہ اپنے تایا کو نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اپنی بکواسیات بہت یاد آ رہی ہیں، یا وہ سڑے ٹماٹر اور آپ کا سر پھٹنا؟ دادا جان، اگر آپ کا پورا خواب بھی سچ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا حتمی اور آپ اس کی روک تھام نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کے بجائے جائیے اپنی جائے نماز پہ بیٹھ کے دعائیں مانگے اور صرف اپنی کشتی بنائیے۔ ارے بھائی، آخر اس رات آپ کی کون سی بات ان کے پتھر دلوں پہ اثر کر گئی جو اب جا سکے گی؟ کیا یہی عبرت نہیں تھی آپ کے لیے؟
اب بہت فرق پڑے گا۔
کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے۔ اگر احادیہ صاحبہ کو شفا مل گئی اور ان لوگوں کو عبرت نہ ہوئی تو اب آپ جا کے نصیحت کریں گے تو تایا مزید بگڑ جائیں گے، اور پھر جب احادیہ صاحبہ کو شفا مل چکی ہے تو پھر وہ خود یا رامین صاحب ایک فون کر کے نہیں بتا دیتے؟ پتا ہے کیوں؟ معاف کیجیے گا دادا جان، مجھے ایسا کہنا پڑ رہا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہوئی ہے جس کا کل تک مذاق اڑا رہے تھے۔
خدا نہ کرے کہ تمہاری توقع ٹھیک ہو۔
ارے نیکی کرو اور دریا میں ڈال، اور ذرا سوچ سمجھ کے بولیے، خدا آپ کی بات سن لیتا ہے۔ ویسے خدا کرے کہ یہ لوگ فون بھی نہ کریں، اگر اکرم نے فون اٹھا لیا تو کیا ہوگا؟ پھر میں سچ میں ایسے کیسے بلاؤں گی کہ آپ نے احادیہ صاحبہ کے لیے جا کے دعا کی اور انہیں شفا مل گئی اور پھر یہ ایسی حالت میں ہے؟
مجھے ان دو آدمیوں کے پاس جانا چاہیے۔
کون سے دو آدمی؟
سید غفور اور بہادری۔
اس کا کیا مقصد؟
کچھ نہیں، تم رہنے دو۔ پہلے میرے جانماز پر بیٹھنے پر مجھے تنگ کرتی تھی، اب میں جو بھی بولتا ہوں اس میں ایسی رکاوٹ ڈال دیتی ہو کہ میں پھر جانماز کا ہی ہو کر رہ جاؤں۔
دادا جان، آپ ان دونوں کے پاس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جو آپ کے بھی جانی دشمن بنے ہوئے ہیں اور مارنا چاہتے ہیں، انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم تینوں چل کر جلیل تایا کو نصیحت کرتے ہیں، اور بہادری جیسا شخص جو موقع کی تاک میں ہے کہ اسے جلیل تایا نظر آ جائیں تو ان سے گاڑی چرا لے۔
حاجی صاحب، اگر آپ نے اپنا روزہ نہیں توڑا تو پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گی، یہ لیجئے۔ ارے دیکھو، تمہارے پاس 100 جانے ہیں تو میرے پاس ایک سے زیادہ نہیں ہے، جو میرے آتے ہی تمہاری آنکھیں چھت کو دیکھنے لگتی ہیں۔ یہ لو پہلے یہ شربت پی لو، یہ گرم رکھا ہے تاکہ تمہارا گلا کھلے، مٹھاس بھی برابر ہے۔
تمہیں کیسے پتا چلا کہ مٹھاس بھی برابر ہے؟
نیچے ہی چک کے دیکھ لیا میں نے، یہ کیا کر دیا۔ ارے بابا استغفر اللہ، اب کوئی بات نہیں، میرا روزہ تو ٹھیک ہے، مجھے یاد تھوڑی تھا۔ یہ لو پیو، اب پی بھی لو۔
سنو، تم کبھی نہیں سدھرو گی۔
فریدہ، ایک فون دو تاکہ میں مریم کو فون کر کے بلا سکوں۔
اگر میں آپ کو فون دے دوں تو کل سے میرے شوہر کو الگ کام ڈھونڈنا ہوگا، اور مجھے بھی اپنے دو بچوں سمیت جا کر ایک کرایے کا گھر ڈھونڈنا ہوگا۔ میں خود ڈاکٹر سے کہہ دوں گی کہ بابا سے بات کر لے تاکہ مریم واپس آ جائے، بشرطے کہ واقعی مریم کو بلانے کا معاملہ ہو۔ تو میں جا رہی ہوں، آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔
بھاگو مت، واپس آؤ۔
میں کہاں بھاگی جا رہی ہوں؟
جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر آؤ فریدہ، جاؤ، اور اپنے باپ کے جھوٹ انہیں بھی سنا دو۔ صرف ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اپنے آپ کو بچوں کی چون چرا سے بچا سکو تو جلی بھی مجھے اس بوڑھے کو اطلاع دینے سے روک سکتا ہے۔
امی، آپ جانتی ہیں کہ اگر چچا کو پتا چل جائے
کیا ہوگا؟ وہ آئیں گے اور بولیں گے کہ اپنی ساری دولت مجھے دے دو، میں لے جاؤں گا۔ کیا سوچے تم لوگوں کی؟ تمہارے چچا نے کہہ دیا اور تمہارا باپ اس رات کی قسم کو نبھائے گا؟
تو پھر آپ کیوں انہیں بتانا چاہتی ہیں، شر برپا کرنا چاہتی ہیں؟
میری مرضی، فرض کر لو کہ میں شکریہ بجا لانا چاہتی ہوں
گھر سے نکال دیے جانے کی قسمت پر۔
آخر میں اس گھر کی کس چیز سے دل لگاؤں فریدہ؟ تم ہی بتاؤ، تم ایک عورت ہو، آج تک میں سمجھتی تھی کہ میں مجبور اور محتاج ہوں، مگر اب اس گھر سے نکالے جانے کا مجھے کوئی خوف نہیں۔
امی، مجھے یہ نہیں پسند کہ وہ بیتو کے وائس صاحب चादर पोश लड़की के साथ बार बार मेरी जिंदगी खराब करने के लिए आ जाएं और मुझे ये बताएं कि क्या करने का हक है और क्या नहीं है। आपको शिफा मिल गई, खुदा का लाख लाख शुक्र है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब किसी के कदमों के मरहूने मिन्नत हैं। खुदा हाफिज।
अरे बाबा, जो भी है यकीनन कल रात जागा नहीं होगा।
रुको रुको, तुम मत उठाओ।
वो क्यों?
हेलो, सलाम, फरमाइए। कौन? अच्छा जी जी, मुझे नहीं पता, रुकिए आप जरा उनकी बेगम से बात कर लीजिए। इस्तखारे का जवाब पूछ रहे हैं। तुमने दादा जान की तबीयत देखी?
यकीनन ठीक होगी, जब ही तो तैयार होकर चले गए। हेलो,
कहाँ गए?
हेलो हेलो,
कौन है?
खोलो।
आप हैं? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सैयद साहब, और जासूस होगे तुम खुद? जाओ मुंह हाथ धोलो और तैयार हो जाओ, हमें बहादुरी के घर चलना है।
एक दो आ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ ना।
याल्ला,
बेगम घर पर नहीं है और मेरे सर पर चादर है, आ जाओ।
बहादुरी, हमने तंग तो नहीं किया?
वाह बहादुर लड़का, आज यहाँ कैसे? आओ आओ, ये पंजे साफ करो और आठ दस जोड़ी अपने बीवी बच्चों के लिए ले जाओ।
बहादुरी, मैं अकेला नहीं आया।
सलाम अलैकुम।
तुम फिर से अपने साथ क्यों ले आए?
डरो मत, मैं तुम्हें कुछ राज बताने आया हूं। मैंने उससे बहुत बहस की, मैंने कहा कि अगर तुम्हारी बीवी को शिफा मिल जाए और फिर भी तुम लोगों का पैसा न लौटाओ तो अजाब के मुंतजर भी रहना, खुदा का अजाब। मगर उसने शुरू से आखिर तक सिर्फ हठ धर्मी ही दिखाई। ये सब हुआ यहां तक कि कल रात को खुदा की मर्जी से जो ख्वाब मैंने रमजान के शुरू में देखा था उसका बकिया हिस्सा मुझे याद आ गया। उसकी ताबीर अजाब इलाही के सिवा और कुछ नहीं, ऐसा अजाब जो खुश्क को तर सभी को एक साथ जला देता है। सिर्फ जलील और उसके घर वालों को ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो ये जानते हैं कि जलील कौन है फिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं।
सैयद खलील, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जावेद यान की बेगम इस वक्त शिफायाब हो चुकी हैं?
मगर मुझसे ये खबर छुपा के रखी है।
मतलब आपने खुद नहीं देखा?
अब जबकि यहां तक सब सच था तो अब बाकी के सच न होने की कोई दलील नहीं दिखती।
ठीक है, फर्ज करो तुम्हारा किस्सा अगर तुम्हारा भाई ना मान सका, वो हम दोनों जाहिल मान लेते हैं, तो फिर तुमने ये जोदो तकवा की दास्तान हमें इसलिए सुनाई है ताकि हम तीनों मिलकर एक मुस्ताजाबियों की अंजुमन बना के शब कदर में कुरान सर पर रख के दुआ करें या अल्लाह हमें इस जावेदियानी अजाब से बचा ले। मगर मेरे मुंह में खाक जलील और उसके बाल बच्चों के तन बदन पर एक बाल भी बाकी ना रहने देना, ठीक है?
ला इलाहा इल्लल्लाह, जी हां, मैं आप लोगों का दामन थामने आया हूं ताकि सब मिलकर खुदा के अजाब को रुकवा सकें, मगर दुआ से नहीं और जलील की खातिर भी नहीं।
सैयद खलील भाई, कुछ ऐसा कहो जिससे मुझ जैसा इंसान भी मान सके। फर्ज किया सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से जलजला और सैलाब आने वाला है जो हम सब।
सैलाब और जलजला, ताहून वबा, ये सब मेरे भाई के लिए या मेरे भाई जैसे 10 आदमियों के लिए? हाँ मुमकिन है तुम दोनों के बगैर किसी सनद और कागजात के जमील की शिकायत करना बेफायदा है, मगर खुदा गुरु की मदद करता है। क्या मालूम एक छोटी सी तहकीक और छापा जलील को उसकी औकात याद न दिला दे। असल ये है कि जुल्म के मुकाबले में खड़े हो जाओ, नतीजा चाहे जो भी हो।
गौर से देखिए, ऐसा कार्टून दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखो इसे, देखो
भाई। तुम्हारा मतलब हम कोर्ट जाएं और जावेद यान पर केस कर दें?
गफूर, ऐसे जावेद यान कहना शिर्क है।
तो ये बातें घर के दरवाजे पर ही बता देते ना।
कहां चले?
माफ करना बहादुरी, सुबह ही सुबह तुम्हें तकलीफ देने पहुंच गया। मुझे नहीं पता था कि मामला क्या है।
क्या है मामला?
अब मैं क्या बताऊं हाजी साहब, जावेदियान का नाम जैसे भी लिया जाए ये वही है जिसके बारे में हमने तुमसे दो जुमले की बात कर ली, फौरन आया और हमारा जीना हराम करके चला गया। अब तुमने ख्वाब देखा है जो भी कबूल है, मगर मेरे सीने पर पहले ही देव का पैर रखा हुआ है, अब उसके सीयों से भी पंजाजमाई करूं?
ले आप सीने वाले सैयद, अपने दीन और ईमान को कहां सी डाला? खुदा के गजब की फिक्र छोड़ के देव की शाख के फिक्र मंद।
तुम इस कदर ईमानदार हो कि एक अजीब और गरीब कुरान के जरिए अपने भाई के मद्दे मुकाबिल खड़े होकर उसकी फालिजदा बीवी को शफा दे सको, मगर मेरा ईमान तो इतना ही है कि मेरी रोटी ना हो तो मेरा दीन भी नहीं है। भाईजान मेरी सितात इससे ज्यादा नहीं है, गलत कह रहा हूँ बहादरी?
तो इतना जावेदियान जावेदियान ना करते कि आज तुम्हारे लिए दियो बन जाए।
क्या बात है, बिलाखिर तुमने एक ढंग की बात कर ली।
ये बताओ क्या तुम तैयार हो कि अपने बच्चों को यतीमी के दहाने पे छोड़ के जाओ और जावेदियान के खिलाफ केस करो इस उम्मीद पर कि शायद तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए?
संजीदा मत हो मेरे भाई, अपने दिल पे मत लो, ये अपने जान नमाज पर बैठ के मजहबी कहानियां सुनाता है, मगर चूंकि इसकी कोई सुनता नहीं तो उस पर ड्रामा बनाया जा सके तो आकर दूसरों को सुनाता है ताकि उसके बदले में तारीफें मिले। एक बार मेरा ये पांव ठीक हो जाए फिर मैं अपने मुर्गी पाए वाले हाथों से सबको अजाबे इलाही दिखाऊंगा, देखना तुम लोग।
तुमने कह दिया और खुदा ने होने दिया। अगर अकेले कयाम करने की बात होती तो तुम जैसे डरपोक से बेहतर अंदाज में पूरी दुनिया में जितने भी जलील जैसे उन्हें मार चुका होता।
तुम अपनी बताओ, क्या तुम में इतनी लियाकत है? अगर तुम इतने लायक और काबिल होते तो हम दोनों को भी कायल कर चुके होते। देखो हाजी, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहो, अगर तुम्हारे भाई का मामला बीच में ना होता क्या तब भी तुम हम दोनों को इस बीच में घसीट के लिए आते?
मैं जिसके जुल्म जोर का रोना रो रहा हूँ वो मेरा भाई है, कोई और नहीं।
ये बताओ क्या तुम्हारी दुकान के अलावा विरासती अमलाक का मामला भी बीच में है क्या, कि अगर जलील को कैद कर लिया जाए तो तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा? हाँ
हाजी, क्या वाकई ये सब बातें सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहे थे तुम? भाई बहुत गैरतमंद हो ऐसे तुम।
मैंने एक उम्र सिर्फ अपने नफे के उसूल में गुजार दी, मुझ बख्त ने जब कभी तुम लोगों के लिए दिलसोजी की है तुम लोगों ने हर बार मुझ पर कोई इल्जाम लगाकर मुझे सुनहरी लकड़ी करार दे दिया। वाय है उस दिलसोज शख्स पर जो तुम जैसों के लिए कदम खैर उठाता है सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन उसका सिला मिलेगा। बदबख्त है वो जिसे ये पता नहीं है कि खुदा से बेखबर काफिर की मलामत करोड़ों खुदा से बेखबर मुसलमानों की कब्रों पर लगे फूलों से ज्यादा बढ़कर होती है। खुदा का खसब हो तुम सब पर, चली के साथ चैन में जाओ तुम लोग।
काश हम ये आखिरी बात न करते उससे, सैयद है मुमकिन है उसकी आह हमें लग जाए।
तुझ दोगले मक्कार को भी एक बात कह दूं, बच्चों के लिए पंजे तो लेते जाओ,
कल रात ही खाए हैं।
जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, पहले मुझे कुछ चीजों की तसल्ली हो जाए फिर।
बाबा जान, इसका आपकी परेशानी से कोई वास्ता नहीं।
सलाम बाबा, मैंने चाबी दरवाजे के ऊपर रख दिए ताकि बच्चों का हाथ ना पहुंच सके।
वास्ता हो या ना हो लेकिन खुद आप भी अब मेरी इत्तला के बगैर कहीं नहीं जाएंगे।
बाबा।
मम्मा।
क्या बात है?
कुछ नहीं, औरतों बेड से वक्त लिया है, अब इन्हें फिक्र है कि मैं डॉक्टर के बहाने कहीं और चला जाऊंगा।
रामी।
जी अम्मी जान, आया।
बात सुनो, इधर आओ इधर आओ, कहीं उल्लू बनके उनकी बात मानने मत बैठ जाना।
कौन सी बात, कैसी बात?
तुम लोग अब कुछ नहीं बोलोगे?
अम्मी ने कहा है आपसे बात ना करें, मगर ये नहीं कहा कि आपको देखे भी नहीं।
हाँ भाई ठीक, क्यों देख रहे हो इस तरह मुझे तुम लोग? क्या मैं यहाँ से उठ के दौड़ने लगूंगी?
जी अम्मी जान। सलाम।
वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हो बच्चों?
अरे तुम दोनों यहाँ हो, चलो भागो नीचे स्कूल का काम करो। शाबाश शाबाश, जाओ।
तुम खुद भी बाहर चली जाओ, मुझे रामीन से अकेले में बात करनी है। मैं भी कोई चिड़िया घर की बंदरिया नहीं हूँ जिसे तुम्हारे बच्चे सिर्फ देख सकते हो। जाओ।
अगर इस नौकरानी से भी नाराज हैं तो जाती हूँ।
अब क्या हो गया?
कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है।
रामीन, तुम सब जानती हो कि मैं बगैर किसी सियासत के ये कह रही हूँ कि तुम्हारे चचा को पता चलना चाहिए।
अम्मी आपको क्या हो गया है, आप क्यों इस मसले को मजीद बढ़ाना चाहती हैं?
मैं बात बढ़ा रही हूँ रामीन, मेरी बात पे तो इतना बुरा नसीब बिगड़ा है कि काफी अरसे से उसका खुमियाजा भुगत रही हूँ। अगर तुम गैरतमंद हो और अपनी किस्मत का ख्याल रखो जो दूसरों के हाथों खराब होने वाली है।
इस घर में गैरत थी ही कहाँ जो मुझे कुछ मिली हो।
मैं तुम्हारे चचा की तरह अल्लाह रसूल की बातें नहीं कर सकती, लेकिन अगर जरूरत महसूस की तो मैं नीचे आऊंगी और रात के खाने की मेज पर सबके सामने उसे कहूंगी कि अपने बेटे की जिंदगी में टांगना अड़ा है, ये मैं कह देती हूँ। तुम जाओ और अपने चचा से कह दो, अगर जरूरत महसूस की तो मैं खुद सामने आ जाऊंगी।
आप क्या कह रही हैं? अगला कह रहा है कि बाहर जाने के लिए मुझसे इजाजत लेके जाओ और आप कह रही हैं कि अपने चचा के पास जाओ।
ठीक है, कुछ कुछ बोल देना, कुछ कुछ बहाना कर देना। तुमने मेरे ठीक होने पर फूल क्यों नहीं खरीदे?
ये क्या कह रही हैं अम्मी?
दरवाजा खोलो।
अम्मी अम्मी
दरवाजा अच्छा, खोलो
अच्छा। लीजिए, खोल दिया दरवाजा।
जाओ मेरे लिए फूल लेकर आओ। रामीन, क्या मेरा ठीक होना तुम्हारे लिए सबकी तरह मामूली है?
अम्मी
जाओ मेरे लिए फूल लेकर आओ, जाओ, फूल चाहिए मुझे।
अम्मी बस करें।
आप कहाँ थे अब तक?
वक्त बर्बाद करने गया था।
फिर भी खुदा का शुक्र है कि आप इतने तो होश आवास में हैं कि जहाँ भी चले जाएं अपनी नमाज कभी नहीं भूलते। मुझे पता है कि वो लोग जिस चीज के खुद अहल थे वो सब आपको बोल चुके होंगे, मगर सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने उन्हें क्या कहा। दादा जान, क्या आप उन दोनों को भी खुदा के गजब का बताने गए थे?
उनकी गीबत मत करो, जो भी था कहानी खत्म हो चुकी।
वही, कम अज कम इतना सबर तो कर लेते कि अहादिया साहिबा के ठीक होने की पक्की खबर आपको मिल जाती, फिर जाते ताकि कोई गलत फहमी की जगह न बचे।
नमाज पढ़ रही हूँ, अचानक कौन आ गया इस वक्त, कौन है?
सलाम चाची जान।